और भागवत श्रीमद् भागवत में बतलाया गया कि भगवान को मेरा स्वरूप समझो, आचार्य मां विज्ञान ना अवमन्ने तकर चित। कभी मेरी गुरु जी की कभी अवज्ञा मत करो। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय है। सर्वदेवमय मैंने तीनों जितने भी देवता हैं, देव उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है। ये गुरु ब्रह्मा हरि, ब्रह्मा विष्णु और महेश मय है। हमने एक दिन बतलाया था गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश है एवं पर ब्रह्म है। ये भी बतलाया था उस मंत्र में है।
गुरु साक्षात पर ब्रह्म।
कल हम लोग सनातन गोस्वामी जी की टीका में देखा परम ब्रह्म मूर्ति है,
साक्षात।
इसलिए किंतु सब समय ये ध्यान रखना चाहिए, विषय नहीं, आश्रय गुरु, सेवक भगवान है। दूसरी बात, ब्रह्मा इसलिए कहा, ब्रह्म का कार्य है सृष्टि करना। ऐसे गुरु जी हमारे हृदय में भक्ति को रोक करके उसको सृष्टि बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा। विष्णु माने पालन करते हैं भक्ति को, गुरुदेव पुष्ट करते हैं। जब तक कि प्रेम न हो जाए तब तक पुष्ट करते रहते हैं। कितना परिश्रम करते हैं एक शिष्य के लिए ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं बदले। और अंत में जीवों के अनर्थों को शंकर की भांति सब को दूर कर देते हैं, अनर्थ अपराध दुर्दैव, और उसको प्रेम में उपस्थित करते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मय हैं। गुरु जी के लिए यथार्थ गुरु मैंने बतलाया, जीव जो इस समय बद्ध है उनके लिए भगवान की भक्ति के बिना, कृष्ण प्रेम के बिना कभी भी उसकी गति नहीं है। उसकी विमुखता भक्ति के द्वारा ही दूर होगी और तभी वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, वो उसका जीवन आनंदमय होगा। किंतु ये भक्ति मिलेगी कहां से, जो उस जगत का आदमी हो और इस जगत का आदमी हो। एक चीज चीन में मिलती है किंतु चीन और भारतवर्ष में विवाद है, और वहां का चीज खूब सस्ता मिलता है। अब वो चीज कैसे आई, यदि नेपाल में जाओ, नेपाल के आदमी चीन में भी जाते हैं, इंडिया में भी आते हैं, तो वहां से कोई संपर्क किया जाए तो चीन की वस्तुएं हमको मिल जाएगी। ऐसे ही भक्ति स्वयं गोलोक वृंदावन में रहती है, वो संगीत और प्रलादनी की वस्तु है, और वो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर नंद बाबा यशोदा, ललिता विशाखा, बलदेव जी, मधुमंगल जी, श्रीदाम जी, रक्त पितृ इत्यादि लोगों में वो भक्ति रहती है। अब वहां पर रहती है तो यहां के लोगों को कैसे मिले, जो वहां पर भी रहते हो और यहां पर भी रहते हो और वहां की चीज आमदनी यहां कर सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम जो उन लोगों के अत्यंत प्रिय हैं, स्वरूपतः उनके ही है, और इस जगत में कृष्ण की इच्छा से, राधा जी की इच्छा से आते हैं, या तो भगवान अपने आप को जाते हैं अथवा अपनी शक्ति को भेजते हैं। गुरुदेव जी उनकी करुणा शक्ति है। संसार दावा नलली लोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्व उनकी मूर्ति है, कृपा की, भगवान की कृपा की मूर्ति इस जगत में उतरती है, तब उसको है तो वो शक्ति है, शक्ति किंतु पुरुष के रूप में यहां पर आती है, कभी शक्ति के रूप में भी आती है, जैसे जन्मामा और
सची देवी,
सची देवी, हेमलता ठाकुरानी और मालिनी देवी,
सीता ठाकुरानी
है,
सीता ठाकुरानी
हाँ, और गंगा माता, ये सब जो हैं, ये लोग भी गुरु के रूप में आए हैं। तो ये सब लोग शक्ति हैं, किंतु कभी पुरुष के रूप में और कभी किसी के रूप में, आचार्य के रूप में ये लोग आते हैं। और एक चीज समझो, कभी हिमालय का, कैलाश का पानी, वहां पर जहां पर महासागर है वहां पर जाएगा कि नहीं, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, चलता है, चेतन है, जाएगा कैसे, कोई लाएगा तो जाएगा ना? देखो पानी ये थे ना भगीरथ जी, वहां पानी था गंगा, और उसको कैसे ले आए, और वो धारा आज तक चलती आ रही है। ऐसे गुरु परंपरा की धारा कृष्ण से चली और आज तक परंपरा की धारा से वो जो प्रेम है ये जगत में प्रवाहित होता रहता है। गुरु उस प्रेम को लेकर के जगत के जीवों, ये गुरु जी का प्रधान कार्य है। यदि कोई ऐसा न दे सके तो वो गुरु गुरु नहीं है, यही देना ही उनका गुरु है। दूसरी बात इसके संबंध में भी आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, तब यही समझिए गुरु नहीं को कहते हैं। और ऐसे ही गुरु के लिए कहा गया, तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रय। और एक और है ऐसा ही, तस्मात गुरु प्रपद्येत, और एक
शब्द
ऐसे गुरु का वो दिया गया है, तद्विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छे समित प्राणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ
गुरु उपसृत।
ये दोनों गुरु का दोनों में लक्षण दिया गया, समस्त शास्त्र में पारंगत हूं, और पारंगत होने पर भी गुरु नहीं है यदि ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, पर ब्रह्म अर्थात भगवान की अनुभूति नहीं है तो वो सब जानना भी बेकार ने? और यदि शास्त्र का ऐसा कोई श्लोक याद नहीं है, जैसे कि हमारे गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज थे, किंतु परब्रह्म की अपरोक्षानुभूति है, इसलिए गुरु है। समस्त शास्त्रों में प्रवीण भी हो और भगवान की वैसी भक्ति नहीं है तो गुरु नहीं। अब हम लोगों के परंपरा में प्रभुपाद जी ने हमने भागवत परंपरा कहा ना, भागवत परंपरा क्या चीज है, रियलाइज जो सोल है, अनुभव संपन्न जो है, उसको उन्होंने प्रभुपाद ने उसमें लिया और बाकी को काट छांट कर दिया ना, इसलिए सहजिया लोग बिगड़ जाते हैं। हमारे गुरुओं का नाम नहीं इसमें लिया और उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी को ले लिया, और फिर गौर किशोर दास से उल्ले उल्ले और बाकी सब छूट गए। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हम लोगों के थे, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो लोग बिगड़ करके गौड़ीय वैष्णव को नहीं मानते हैं। धारा को न कहे तुम लोग अपने मानते हो मानो, किंतु भागवत परंपरा लेना पड़ेगा, सिद्ध जो महापुरुष हैं उनको लेना पड़ेगा, उनसे ये प्रेम मिलेगा, और नहीं तो थोड़ा सा डायरेक्शन मिल सकता है मध्यम अधिकारी को, किंतु प्रेम जो देने वाला है तो कौन देगा, जिसके पास में प्रेम है सिद्धि वही तो देगा, ना देगा कौन। इसलिए कुछ जो गुरु का अनुसरण करने वाले जैसे नारद इत्यादि, ये सब दृष्टि देने से ही बस हम लोग की सिद्धि हो जाएगी, और उसके अनुगामी लोग जो हैं वो शास्त्रों के विचार से कुछ दिन अपना संग दे करके हमको भक्ति में प्रतिष्ठित करा देंगे, और इसके बाद वाले जो हैं क्या करेंगे, चलिए हमारे गुरु जी के पास में, हमारे आचार्यों के पास में चलिए, इस प्रकार से वत पर दर्शक। और इसके बाद में जो आचार विचार में है ही नहीं है प्रतिष्ठित, न सिद्धांत का कोई ज्ञान है न कुछ, और सबको शिष्य करने लग गए, भाई उसे शिष्य से गुरु से कुछ भी लाभ नहीं होगा, ते उभौ दोनों शिष्य और गुरु
नरकम घोरम रजत कालम,
नरक तो नहीं जाने किंतु प्रेम नहीं मिलेगा, धन पुत्र लक्ष्मी ये सब मिल जाएगा। इसलिए ऐसे शुद्ध गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ये सब तो तत्व तो हम लोगों ने बहुत से विचार किए हैं। अब थोड़ा सा बामन महाराज जी के चरित्र पर मैं चलता हूं। महाराज जी का जन्म हुआ था आजकल ईस्ट बंगाल कहते हैं, ईस्ट बंगाल माने बांग्लादेश, उसमें खुलना जसोर में हुआ। जसोर जो है भारत अभी मिला हुआ है, जसोर कहते हैं वो बनगांव, बनगांव के बाद ही में हुआ अर्म, और इधर में इंदौर वहीं पर पास ही भारतवर्ष से, माने भारतवर्ष में तो था ही उस समय, इनका जब जन्म हुआ था उसमें भारतवर्ष था वो। इनका जन्म आज से 73-74 वर्ष पहले हुआ, हमसे ये 2-3 वर्ष बड़े हैं, हमारा ही करीब करीब 70 हो गया, यदि 71 या 70 तो उनका 2-3 वर्ष हमसे बड़े हैं, तो 73 के करीब में या 72 से ऊपर होगा, 73 या 74। और त्रिविक्रम महाराज का उनसे भी 5 वर्ष और बड़ा है, सब थोड़े थोड़े अंतर से, तो वो आज 74-75 वर्ष हो गया ना। उस समय में बंगला और भारतवर्ष का ये विभाग नहीं था, उनकी माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या थी, हमने उनको देखा है बहुत दिन, तुम लोग भी देखा है बहुत दिन, नहीं इनके पिताजी हमारे गुरुजी के शिष्य थे, देखो उनकी मैया जो थी प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका मैया का नाम याद है, ये याद करके कहीं से लिख लेना,
बाबा नाम मन है माय नाम,
और पिताजी का
सतीश चंद्र दास अधिकारी,
सतीश चंद्र, किंतु उनका ये अच्छा, उनके पिताजी दो भाई थे, एक का नाम था नरसिंह, नरसिंह का नाम था,
प्रथम थे नरसिंह नाम छे,
कुछ दूसरा नाम था, प्रभुपाद जी ने उनका नाम नरसिंह, नरसिंह ब्रह्मचार्य, और उनका और उनके ये छोटे भाई थे बामन महाराज जी, नहीं बामन महाराज जी बड़े, बड़े भाई के लड़के थे बामन महाराज जी, और छोटे भाई थे नरसिंह, किंतु घर के मालिक थे नरसिंह, पढ़े लिखे थे, अमीन थे, उनका बड़ा रोब राब था, और देश में उनका बड़ा नाम था, बड़े सत्यवादी ईमानदार, एक पैसा भी घूस नहीं लेते थे। नरसिंह महाराज जी कह रहे थे एक समय में हमने देखा जो ढोट मृदंग बज रहा है और कुछ लोग गा रहे हैं। गाना कौन सा? संसारे पोड़िया
घोरो संसारे पोड़िया मनव ना पाए
ना ना। अरे शरणागति का
दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे
ना ना। और पहले ए मन दुर्मति संसारे पोड़िया ये कीर्तन हो रहा था। सुर नहीं था उसका, आज जो खोल बजा रहा था मृदंग उसमें कोई ताल नहीं। रंगनाथ जी के भाई थे शायद बजा रहे थे। रंगनाथ का जानता है बजाता है, उसको विश्व ब्रह्मांड का सब ताल उसके इसमें जो बजाता है उसी में है सब। कहां गया है? अच्छे त्रिपिकम महाराज जी का ढोल किया है त्रिपिकम महाराज जी का फूल बजा के। तो वो कोई कुछ ताल मान हमारे गौड़ीय वर्ष में कोई नहीं जानता था। अब थोड़ा सा सूर सीखने लगे, पद में उनमें लालित्य है और भाव करते जैसे हमने सुनाई एमन दुर्मती संसारे
पड़िया।
और बालकपन से लेकर के और बूढ़े अवस्था तक का सब चरित्र उसमें भर दिया गया। जब पेट में था तो बड़ा दुख, तो उसमें भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया यही कीर्तन हमने सुना। ये कीर्तन जैसे माता के पेट में उल्टा सिर नीचे और पैर ऊपर बंधा हुआ और घोर नरक पैखाना टट्टी और पेशाब में गड़ा हुआ और छटपट करता है। उस समय में कभी किसी को भगवान ने दर्शन दे दिया, अजय प्रभु अब हम मैं भजन करूंगा जरा निकाल दो। और इसके बाद में भगवान ने निकाल दिया, फिर वही माँ के गोदी में और बहन की गोदी में बढ़ करके मुस्कुरा रहा है, कभी रो रहा है, कभी आऊ कर रहा है, फिर वो भूल गया भजन करना और फिर पढ़ने में लग गया। फिर पढ़ने के बाद में मैया ने कहा, जे बेटा मेरी तबीयत अब खराब है, तू शादी कर ले जल्दी से, बहू आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। बस विवाह करा दिया, बच्चे हो गए, इसके बाद में नौकरी चाकरी व्यवसाय में लग गया। बूढ़ा हो गया तो भी संसार नहीं छोड़ता और अंत में सब इंद्रिय दुर्बल खीन कलेवर भोगा भावे दुखित अंतर दुख। खाने की चीजें खा नहीं सकते, राबड़ी पड़ी है किंतु डायबिटीज है, बतलाओ क्या करेंगे? नहीं खा सकते, रसगुल्ला है नहीं खा सकते, कोई चीज है वो पेट खराब है नहीं खा सकते, भोगा भावे दुखित अंतर। ये कीर्तन सुन करके हमने कहा जो अब हम नहीं रहेंगे, हम जाएंगे। कहां से भाई आए हो? तो मायापुर से। तो किनके शिष्य हो? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। मैं अब जब तक जहां जहां कीर्तन और पाठ होता रहा मैं वहीं पर जाता था और अंत में मैंने नौकरी छोड़ दी और सब छोड़ छाड़ करके अपने भाई को सब कुछ दे करके और मैं चला। भाई मैंने यही उनके छोटे भाई उनको दे दिया, सतीश चंद्र
दशाधिकारी
उनको सब दे करके चले। किंतु चले आए तो ये सतीश चंद्र जी के अधिकारी की जो पत्नी थी बड़ी सती साधी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो सीधे प्रभुपाद जी के पास में आकर के उनसे दीक्षा लिया और वैसे बड़े ठाट से रहती थी, पति को भी दुरुस्त करने वाली थी, पति मांस और खाते खाते घर में झुकने नहीं देंगे तुमको यदि खाएगा तो, उनको निकाल देती थी, बड़ी रूपदार थी, बच्चों को भी ऐसे शासन करती थी। पवन महाराज जी चार भाई जिसमें बड़े ये थे और निताई निमाई एक और
सुबल
वो गुरु महाराज जी का शिष्य सुबल भी और एक था दुर्भागा
ध्रुव
ध्रुव उसाना वो दुर्भागा ही निकला। वो गुरु महाराज जी आए तो वो हरिनाम लेने आया तो मैंने कहा जे भाई अपना ये केस कटा करके आओ तब दीक्षा होगी। जो केस हम नहीं कटाएंगे मतलब तब दीक्षा नहीं है तो हम दीक्षा नहीं लेंगे, हम दूसरी जगह लेंगे। तो दूसरी जगह चला गया बाबा जी के पास, गुरु जी से नहीं है। और बाकी उसके परिवार के सभी लोग यहाँ पर,
गुरु महाराज नाम पहले क्या था
है?
नाम पहले क्या था गुरु महाराज जी के?
गुरु महाराज जी का
संतोष,
संतोष भरतन। तो बावन महाराज जी न, तो बावन महाराज जी करीब करीब वो अभी सब शिष्य नहीं हुए उनके पिता के। बावन महाराज जी को उनकी मैया ने कहा जैसे तुम हम इस घर में नहीं रखेंगे, हम तो गुरु वहां पर दे आएंगे मठ में, ये हमारा लड़का ऐसा नहीं होगा, हमारे जैसा होगा, तुम लोगों जैसा नहीं होगा। कहा तुम जाएगा तो हाँ जाएंगे, अपने काका के पास में जाएगा तो जाएंगे, बस एक काका का नाम करके नृसिंह महाराज जी का और चले आए। उनके काका जी फिर संसार छोड़ करके चले आए। नरसिंह महाराज जी कहते थे ये बहुत लोग हमको देखने आते थे, नृसिंह ब्रह्मचारी बाबा जी चक्की रकम एक और विराट लंबा चौड़ा मोटा एक लोग हो गए, एक बहुत मोटा हमको देखने किया। जब हमको आकर के देखा तो कह रही आपका नाम क्या है? तो नृसिंह ब्रह्मचारी नरसिंह ब्रह्मचारी। हम भी सोचा था जी आपकी बड़ी बड़ी मोछ होगी और बड़ी बड़ा लंबा चौड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा जवान और बड़े बिगड़ंत आदमी होंगे, आपको बड़े सीधे सादे ऐसे। इसके बाद में पावन महाराज जी 11 वर्ष की उम्र में उनकी मैया दे गई,
9.5 वर्ष
बोले पीसी मामा
कैसे
बोले पीसी मामा के देखेंगे
पीसी मैं
पीसी
पीसी मैं और माँ पावन महाराज जी माँ खूब परम धार्मिक छिलो वो थी, इसलिए उनको लेकर के आई और हमारे गुरु जी के चरणों में दे गई। गुरु जी का बड़ा वहां पर प्रताप था मायापुर में, नृसिंह महाराज जी के पास में ले गई तो नृसिंह महाराज जी ने कहा जी इनको दे दो यही सबके मालिक है, उनको दे दिया। बावन महाराज जी उस समय छोटे थे, छोटे से। आज एक फोटो बचपन का कोई दिखला रहा था, हमको विश्वास नहीं हुआ।
बोल चावल के फार्म को साजे छे
हमको वो पसंद नहीं,
जीतो
आर्टिफिशियल मन है निश्चित ऊपर में संन्यास का नहीं, हमको ये मालूम है, हमको ये एकदम नहीं। हमने उनको तो देखा है ना, दुबले पतले थे, सिर बड़ा था किंतु दुबले पतले थे। हम जब आए तो हम आए थे 23-24 वर्ष की उम्र में और वो आए होंगे उस समय में 25 वर्ष के होंगे अधिक से अधिक। तो बावन महाराज जी को उनकी मैया दे गई खूब छोटी उम्र, गुरु जी अपने पास में रखते थे उनको और उनको स्कूल में भर्ती कर दिया। गुरु जी ने वहां पर भक्ति बोने इंस्टीट्यूशन के वो हेड थे हमारे गुरु जी, तो वहां पर इनको भर्ती कर दिया। तो यहां पर पढ़ते थे, कहते थे जैसे एक लेमन जूस देंगे तो तुम यदि श्लोक एक सुनाएगा तो बामन मारे 5-7-8-10 श्लोक याद कर लेते तो उनको 10 मिल जाता है और कोई 1-2 करता और ये 10-10 15-15 ये श्लोक याद कर लेते और गुरु जी इनको बहुत बचपन से स्नेह करते। क्लास में ये सब समय फर्स्ट सेकंड आते थे और उस समय में ही जब ये छोटे थे तो इनको आसन करने के लिए और पत्ता और नमक ये तीन चीज बंगाल में एक साथ में देना पड़ेगा, पत्ता दिया जाएगा परोस और पानी दे चाहे ना दे किंतु नमक उसमें जरूर देना पड़ेगा क्योंकि चावल और सब चीज ये बनता है साग इत्यादि। तो इनका काम ही था पत्ता परोसना और वो देना, फिर इसके बाद में पानी चला और जब खा लेंगे लोग तो वो उसको धो देना, ये सब उनका काम था। और ये पढ़ते हुए भी ये सब काम करते, थोड़ी दिन के बाद में तरकारी या मान न करना बनाना बड़ा फर्स्ट क्लास तरकारियां मान्य करते थे, हम लोग थोड़ा सा करते करते वो पूरा कर देंगे। हमको तो ये सब आता ही नहीं था, पीछे मठ में आकर के थोड़ा सा सीखा, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं था। और ये बचपन से मठ में रहने की वजह से सब कुछ जानते थे, वैष्णव की सेवा कैसे की जाती है ये सब मठ में सीखा। और इधर में पढ़ते भी थे, पढ़ने वाले जितने थे मैट्रिक पास करने के बाद में, हम समझते हैं कि बामन महाराज और एक दो कोई ऐसा ही होगा जो होगा, नहीं तो बामन महाराज का तो कोई नहीं, सब लोग मठ छोड़ करके चले गए। इसलिए बामन महाराज जी पढ़ाई लिखाई कराने के पक्ष में नहीं किसी को भी। मैं पीछे आया ना, इसलिए मैं सबको लगाता हूं जो तुम पढ़ो ये करो वो करो, वो कहते हैं कि नहीं पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पढ़ करके नहीं रहे। हमने देखा गुरु महाराज जी जितने लोगों को पढ़ाया और हमने जितने लोगों को पढ़ाया वो करीब करीब सभी विदाई दे चुके, विशेष करके संस्कृत पढ़ने वाले लोग सभी चले। गुरु महाराज जी भी नहीं करते थे, पढ़ाते थे, जो पढ़ करके आया है उसकी तो विद्या लग जाएगी, और यहां रह करके जो फिर नए रूप में पढ़ करके कुछ करेंगे वो लोग प्राय ही चले जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हुए जो जिनको पढ़ाया वो व्याकरण इत्यादि ये सब पूरे पढ़ लिए, और ठाकुर जी के मंदिर में थोड़ा सा जाते थे, ठाकुर जी की बंसी और ये सब तोड़वा करके गला करके और सुना करके अब बेच लिया लेकर के चले गए। एक पंडित जी हमारे थे, गुरु जी के लिए दूध रखा था आटा हुआ, उसमें ऊपर में मलाई जमी हुई, तो उन्होंने सरकंडा या क्या चीज
पाट काठी
माने एक होता है भीतर में छेद होता है पूरा, बस उसको लगाया दूध पी लिया और सबका सब एकदम पूरा, कोई का पता नहीं। भाई आप लोग ऐसी पढ़ाई पर पढ़िए, हम कभी कभी पढ़ा देते हैं दया आती है, किंतु अब हमने कहा ये अब बहुत से लड़कों को पढ़ाया ना नास्तिक बन गए, एक वृंदावन वाला लड़का था क्या क्या कौन कौन, तो जो पढ़ करके आया ठीक है, नहीं तो पढ़ते 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 जैसे हम लोग हैं मठ में आकर के पढ़ करके माने पढ़े माने शास्त्र पढ़ पढ़ करके, और तब ऐसा नहीं तो बामन महाराज जी इसलिए जानते हैं अनुभवी है, तो वो ये 9 वर्ष की उम्र से ही मठ में है। प्रभुपाद उस समय थे, श्रीधर महाराज जी बामन महाराज जी मैंने कहा जैसे श्रीधर महाराज जी तो बहुत पहले के होंगे, आपने कुछ जाने ना आप नहीं जाने, और श्रीधर महाराज तो हमारे से पीछे में आए
जूनियर,
बामन महाराज बहुत पुराने, वो कागभूषण दी हैं बहुत पुराने आज बहुत पुराने आदमी और अनुभवी आदमी है। उनकी भाषा भी बड़ी स्टैंडर्ड की है, जब बोलेंगे तब और कोलोकियल लैंग्वेज, कोलोकियल माने के ग्रामीण भाषा ऐसा बोलेंगे, बंगला भाषा वहां पर बंगाल की भाषा ऐसे कहेंगे मालूम हो जैसे वैसे उधर की। महाप्रभु कहाँ के थे, सिलहटी भाषा, तो ये भी ऐसे ही चिढ़ाते थे उस सब लोगों। इसके बाद में उस समय कोई नहीं समझता था कि कितने होनहार और ये हैं। धीरे धीरे मैट्रिक पास किया और उसी समय में प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए, यही हो रहा था जे इनको अब हरिनाम दीक्षा दे, प्रभुपाद पहले लिए थे वो ऐसे जैसे कि साधन क्या हम समझते हैं कि गुरु जी से लिया प्रभुपाद जी के बाद में, फिर उनको हटा करके फिर जा जाओ महाराज, और फिर गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी प्रथम से हैं, इसलिए हम कहते हैं जो जिसका हृदय जिसके द्वारा प्रभावित होकर के और परमार्थ राज्य में लगा है, इसलिए गुरु महाराज जी को ही सर्वस्व समझ। गुरु महाराज ने उनका हरिनाम भी दिया, दीक्षा का भी दिया और अंत में संन्यास भी दिया और उसी को उन्होंने माना। कभी कभी वो आते थे हमारे जाजावर महाराज, कुछ कुछ ऐसा कहना चाहते थे किंतु उनको साहस नहीं होता था कुछ कहने का। बोलते ना
बोलते
प्रथम थे पहले से ही गुरु महाराज जी के पास में थे, इसलिए गुरु महाराज जी का उन्होंने हृदय दे रखा था। इसलिए कुछ लोग अभी भी कुछ ऐसा कहते हैं, हम लोग उस विषय को नहीं मानते। तो इसके बाद में कुछ झगड़ा उगड़ा परस्पर हुआ गौड़िया मठ में प्रभुपाद जी के जाने के बाद में, बहुत उथल पुथल हो गया। उस समय बहुत गड़बड़ी हुई, यहां तक कि गुरु महाराज जी के नाम से और नरहरि प्रभु नरसिंह महाराज और इनके सब पास वाले जितने थे निकट वाले पर 15 आदमियों पर मर्डर केस एक चला दिया झूठ मूठ का और इन लोगों को जेल में दे दिया गया। और उस समय में बामन महाराज ही एक बाहर में थे जो सब फाइल लेकर के, छोटे बच्चे अभी 16-17 वर्ष के होंगे और चारों तरफ में दौड़ते रहते थे वकीलों के, और इन लोगों का भोजन बना करके वहां पर दे आते थे। सब लोग इधर उधर हो गए किंतु ये नहीं, और सब वकीलों को भी समझाना, अभी छोटे से बच्चे क्या समझाएंगे, किंतु सब कुछ यही करते थे। गुरुजी इन पर इतना विश्वास करते थे, इनको 103 डिग्री बुखार है ना, कहते संतोष
सज्जन
से
ना संतोष ही बोलते थे हमारे समय में, तो संतोष करते थे और जा रहे हैं वो आएंगे, और जितना आदमी भी हो 50 आदमी हो 100 आदमी हो 10 आदमी हो 5 आदमी हो, रात 12 बजे भी हो रसोई बनाओ, रसोई दिन लग जाए और झट तैयार एकदम। और देखो हमारे यहां भी हम लोग हैं लाट साहब के नाते, बोली रोज जैसे एक तो तरकारियां मान लो खोर, एक तो तरकारियां मान लो खोर गए, यदि मंगल चाव ताले उन्नार आदर्श यदि लो ताले मंगल सब काम करते, नीचे से ऊपर तक कहते थे कि जूता सिलाई से चंडी पाठ तक गुरुजी हमको सब करने के लिए देते, और हम लोग थोड़ा सा 5 पैसा भिक्षा कर लेते हैं तो बस, या कोई काम कर दिया तो हम दूसरा काम भी कर लेते, तो फिर कल्याण कैसे होगा। अपनी योग्यता के अनुसार में सब कुछ करना चाहिए जैसा वो करते हैं। हमने देखा है हमारे आने तक भी लोगों को ये पत्ता देना और ये नमक देना और ये सब करते थे, और इधर में एडिटिंग भी कर रहे हैं गौड़िया पत्रिका, उस समय हमारे आने के बाद में चालू हुई, प्रेस भी पूरा देखना कलकत्ते से सब आना जाना, और खड़ाऊ पहन करके फूल चुनना है तो पेड़ पर चढ़ना होगा तो खड़ाऊ लेकर के चढ़ जाते हम लोग, बहुत दिनों तक खड़ाऊ पहन करके, और वो तो हमसे भी बड़े अभ्यास, चट चट कलकत्ता जाना आना ये सब, एक बार पैर फिसल गया उसमें ट्राम में, सब लोगों ने गुरुजी ने और हम सब लोगों ने मना किया, तब फिर से ये चक्कर लिया हम लोग, अंत तक बहुत दिनों तक मथुरा आने से पहले तक या यहां पर भी हम खड़ाऊ ही पहनते, और कपड़ा कैसा मोटा खाना भी वैसा, तो 103 बुखार में भी सब समय काम करते रहते। समस्त गुरु महाराज जी का ये सब हम लोग कब पीछे से आए, मैं आया 1946 के अंत में और वो 1943 में गौड़ीय वेदांत समिति की 42 में स्थापना हुई, और उसके पहले से ही
1930
साल में आए हैं, तो उस समय तो उनका इतना दायित्व का काम नहीं था, पढ़ते थे। किंतु जब गुरु महाराज जी ने पृथक करके गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना की तो इस समय सभी काम उनका, जितना चिट्ठी लिखना, कोई भी काम करना, देखना सुनना, प्रचार में जाना, उनका रसोई बनाना, सब लोगों को ये करना, ये सब काम वही करते। हम रहते आज के ना कति, हम तो नहीं करेंगे, हम तो छोड़ करके भाग जाए। जब मैं गुरु जी के साथ में बावन महाराज जी प्रेस देखने लगे और मैं जब प्रचार में जाने लगा तो गुरु जी किसी कहते ये रसोई नहीं बना सकता है सबका, बस हमारे लिए बनाएगा दो आदमी के लिए, बाकी जिसको है वो करे और हमारा प्रसाद उसमें दे करके और सबको बांटे, नहीं तो हजार हजार आदमियों का उत्सव होता रहता था। किंतु हमारे ऊपर में विचार करके जानते थे जैसे इसके द्वारा नहीं हो, इसलिए नहीं करते। अरे हम तो, हमारे तो कितने नौकर लगे रहते थे रसोई बनाने में, और हम अभी कभी जीवन में रसोई बनाए नहीं, सब थोड़े दिनों में सीख करके उनके लिए रसोई बनाता था, उत्सव टूसव में नहीं। तो पवन महाराज जी सभी कामों में पटु, प्रबंध लिखना, देखना सुनना, उनकी चिट्ठी, उनका सब काम देखना सुनना सब करते थे। एक बार प्रेस में हाथ चला गया, हाथ उनका कट गया या उंगली कट गई, बस गुरु महाराज जी रोने लगे, उनको लेकर के साथ ही साथ में मेडिकल कॉलेज जा करके, और जब तक अच्छे नहीं हुए तब तक उनको देखना सुनना करना। गुरु महाराज जी ऐसे भक्तों को कभी भूल सकते हैं, जिन्होंने, भगवान कहते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए सर्वस्व त्याग किया, स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु रुपया पैसा, उसको कभी भगवान छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते। पवन महाराज जी की बहुत सी बातें हमें याद है, एक दो नहीं, यदि भंडार खोलेंगे ना तो कितना निकलेगा। हमारे साथ में बहुत जगहों में गुरु महाराज जी के साथ में प्रचार किया, हमको बासन मांजना था, रसोई में बनाता था, किंतु बासन आगे जाकर के मल लेंगे धोकर के साथ ठीक ठाक, और गुरु महाराज जी के लिए छायाचित्र आगे से प्रस्तुत कर रखेंगे, सब कहां कहां क्या होगा ये सब प्रस्तुत करेंगे, कहां पर कैसा भाषण होगा उसको लिखते थे, या फिर उसी को पत्रिका में देना है, सब काम करते थे। जो जो याद आती है मैं वैसे कहता हूं, सीरियल मत लेना, किंतु जो जो याद आता। एक दिन मैं बैठा था तो देखा जो बच्चों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिशु, और लड़कियां और बच्चे दोनों, वो चुचुड़ा के वो जो थे ना ज्ञान बाबू, हाँ उनके लड़के लड़कियां या और आसपास के से सब छोटे छोटे बच्चे, सब कोई लड़का कोई लड़की, ऐसे बातचीत कर रहे हैं हिल मिल गए, जैसे दादू एक दादू तो नहीं बने, तखन ब्रह्मचारी प्रभु प्रभु बोले सब, प्रभु एक तो भूतेर गल्प बोलते पारे भूतेर गल्प, हाँ हम ही जानी, तो अरे देख ऐसा हुआ कि अब बात ये ठीक कह रहे थे, हमने कहा जैसे ये ठीक है तो हाँ ठीक है, देखो वो बीच बीच में पत्रिका करते करते और काम करते करते हम लोगों के आने के बाद में कभी थक जाते थे, तो कभी बिना किसी से कहे हुए ही वो चले जाते थे कृष्ण चंद्रपुर, वहां पर हम लोगों की एक पीसी माँ थी, उनके घर पर चले जाते, वो उनको पुत्र की तरफ में मानती थी, अब बहुत उनको मानती, तो कभी कभी हो जाता तो चुपचाप वहां चले जाते, तो कह रहे थे उन बच्चों से कह रहे देख हम एक बात, मैंने वो तो बंगला बोले भालो हो तो हिंदी में तुम लोग नहीं समझे, देख हम एक बार मठ से करीब करीब 7 बजे मैं निकला चुचुड़ा से, और कलकत्ता जाते जाते 9 बज गया, और वहां से सियालदह जाते जाते हमको करीब करीब 10 बजे लास्ट गाड़ी मिली, और वहां से 10-12 स्टेशन के बाद में वो पड़ता है मजिलपुर जयनगर वहां पर, और वहां से 4-5 माइल पैदल वहां पर जाना पड़े गांव, और उसमें घोर जंगल और कोई रिक्शा जाने का भी रास्ता नहीं, अभी बांस भी नहीं, कुछ
बांस बागान
और बांस बागान और फिर दूसरे दूसरे बगीचे, अब बड़ा भयानक रास्ता है। तो उसी में उनका जाने का अभ्यास होता, 11 बज गया और गाड़ी लेट हो गई, 11 बज गया वही स्टेशन पर, और वहां से अभी 4 माइल जाना है। तो वहां से चला, वहां से चल करके जब बीच रास्ते में आया, वहां देखा जैसे वहां पर बत्ती सब जली हुई है, बहुत सी बत्ती जली हुई है। नहीं क्या हो रहा, बाण महाराज जी कह रहे हैं आ वो सब छेल रहे ना, ऐसे सुन रहे हैं कोई ऐसे, और फिर मेरे में डर रहे हैं और कुछ हो रहा है, ये भूतर की एक गोल को हो। ये सर जब हम वहां गया देखा जैसे विवाह शादी हो रही है, हमारे पास में 2-4 आदमी आए, अरे इधर हमारे साथ में आओ, यहां पर शादी हो रही है, खा पी करके तब जाना, और रास्ता को घेर लिया। तो हमने कहा भाई ये हम तो जानते नहीं थे, ये आदमी जी ऐसे ठीक बोल रहे। तो कहा जी होगी ऐसी कोई बात, तो मैं थोड़ा सा रास्ता से वो जा रहा था, वहां से एक मोड़ है और वहीं पर एक आजकल तो वहां पर ईंट ये टाली है, टाली का कारखाना, तो वहां पर टाली का कारखाना, वहां पर भूत श्मशान था, भूतों वहां पर जलाते थे श्मशान में आदमियों को, तो वहां पर ले गए थोड़ी सी दूर, और देखा जी बड़ा चाक चिक के ये सब हो रहा है, हमको कुछ लोग घेर करके बैठे, विवाह कराएगा, विवाह करा दीजिए, आप तो पुरोहित है ना, ब्रह्मचारी है, और कुछ ऐसे बोलने लगे जी हमको बड़ा डर नहीं लगा जी, ये तो हमने सुना था ये रास्ते में बड़ा ये गड़बड़ का ये है, तो वही तो कहीं नहीं है ये सब वो लोग, और वो हमारे निकट नहीं आ रहे हैं। हमने माला निकाल ली तुलसी वाली और गले में तुलसी की माला थी, और मैं हरे कृष्ण करने लगा, और बच्चे सब पूछे तब इसके बाद में क्या हुआ। तो कोई कहता है जैसे भोजन करके जाना, भाई भोजन करना ये परिचित स्थान नहीं, और क्या जाने क्या है नहीं है, हमको कोई अनुमान ठीक नहीं हो रहा था, ये भूत हो कोई डकैत बदमाश कुछ हो, तो मैं कुछ बोलता नहीं चुपचाप, और बोलते नहीं थे अभी, तो वो चुपचाप बैठे और वो सब परस्पर बात कुछ कर रहे हैं। मालूम हुआ जी ये बात कर रहे हैं, यदि मालाटा ना था तो ताले देखता मैं, तो सुन लिया थोड़ा, माला नहीं रहती तो ये ना जाने क्या करते, अब हमको कुछ डर बाल। हमने कहा जैसे अब यहां रहना नहीं थे, तो मैं वहां से जो बैठाया था वहां, किंतु हमसे दूर रहते थे ना, दूर थोड़ा रहते, तो हमने कहा जैसे भाई अब हम जाएं, ये कहा करके मैं उठ करके चला, और वो पीछे पीछे चारों तरफ से घेर लिए, मैं भी संसन करके हुए और हरे कृष्ण जोरा जोर से करने लगा, तो थोड़ा सा हट गए। इसके बाद में मैं धीरे 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 किसी प्रकार से वहां जब आया, तो वहां से लौट गए और कहने लगे आज ये बच गया, अच्छी तरह से बच गया, नहीं तो यदि ये नहीं करता ऐसा बोलता नहीं तो हम छोड़ते नहीं। आर क्या
घोड़ा
गाड़ी घोड़े के गाड़ी पर बैठा करके और पहुंचा दिया उनको,
एक टोकरी भर
और एक टोकरी में फल भर करके भी उनको दे दिया,
सब ऋतुओं के फल एक साथ
और उनको देखा और वहां पर पहुंचा दिया। यहाँ जब आया तो फिर जेहू उतरा तेहू गाड़ी कहीं कहाँ चली गई, और आदमी भी नहीं रहा और फल भी नहीं रहा। अब तो मैं डर गया, इनके घर में आया, कहा जैसे वो कहती है जैसे अरे बाबा तुम्हें ऐतो रात्रि कुथा थी के आसले, तुम्हारे प्राणी बेचे गए यही चौथे स्टॉल पान से बच गया, यही बहुत हो गया, नहीं तो आज तुम तो मर जाते वो तो। उन्होंने कहा जी हमने ऐसा ऐसा देखा रास्ते में, अरे तो वही कुतब पूछ रहते हैं ऐसा करते हैं, और कितने आदमियों को जान से मार डाला, तुम तो बच गया, ये हरिनाम करता था इसीलिए बच गया, नहीं तो तुमको छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसे अब वही सब सुनने के लिए रो जाते थे ऐसे। अच्छा एक दिन देखा सब लोग बैठे हुए थे बच्चे सब प्रचार में कहीं संन्यास लेने के बाद दादू अपनी तू हाथ देखते जाने हम ही जाने हाँ देखना जानते हैं तो उसे ऐसे ही कर बातचीत करते हैं जो कुछ कहेगा वो सब बस अच्छा। उन्होंने कहा जे देखो तुम्हारा चित्त चंचल है और तुम्हारी तुम्हारा पेट खराब रहता है वो मैंने देखने से मालूम हो जाता है दुबला पतला आदमी तुम्हारा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती पेट में गड़बड़ी है और तुम्हारा चित्त चंचल नहीं रहता तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है मैंने जिसको देख लेते हैं समझ जाते हैं बस वो लोग कहते अरे ये तो सिद्धार्थी है ये तो जानते हैं सभी बस ऐसे ऐसे ही बात और परमार्थिक लोग आते हैं तो बड़े तो की बातें जैसा आदमी आएगा उससे वैसे ही बात करने में चकुरना है। अभी बतलाया ना ये हम लोग आसाम में गए और जहां पर तर्क वितर्क हुआ महाप्रभु जी के विचारों की जरूरत हुई ये महाप्रभु स्वयं भगवान है 49 39 प्रकार के प्रमाण वहां पर संग्रह करके अपने साथ में रखे उनको देखने की जरूरत नहीं है धड़ा धड़ धड़ा धड़ 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 बोलने ऐसे ही वो शब्दकोश शब्दकोश माने
डिक्शनरी
और लोगों को इतना याद हम लोग तो याद करेंगे भूल जाएगा उनका ये सब ये वो हमने वहां पर बतलाया राधा रानी कुंज में परिक्रमा हो रही है गुरुजी लिखवा रहे हैं अब धारावाहिक रूप में प्रबंध लिखा रहे हैं और वहां पर कितने आदमी हैं और गुरुजी का हम लोग का कहीं इधर उधर छूट जाएगा उनका प्रूफ रीडरी में पक्का एकदम तो बिकम महाराज से भी छूट जाएगा वो भी प्रमाणिकली देखते हैं उनका भी नहीं छूटता किंतु उनसे भी छूट जाएगा किंतु उनसे नहीं छूटेगा बहुत मुश्किल। अब आजकल तो ऐसा कोई प्रूफ रीडर संपादक ये सब मैं देखता ही नहीं। जिस समय मैं आया तो हमसे इन लोगों का कोई परिचय नहीं था हमारा परिचय था मधुसूदन महाराज जिसे उनका नाम था नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी तो मैंने उनको पत्र दिया तो उन्होंने गुरुजी को दे दिया जिसका उत्तर दे दिया तो गुरुजी ने इनको लिखवाया तभी से हमको तैयारी जी कहते थे तिवारी जी नहीं बंगला में होता है तैयारी
बंगला एक तिवारी
तिवारी हाँ तो वो तैयारी जी कहते थे। तो मैं जिस समय आया मैं तो इन लोगों को पहचानता नहीं किंतु चिट्ठी में हम बहुत बार उन्होंने लिखा गुरुजी के नाम से बस उनके हैंड राइटिंग में जाता जब मठ में मैं गया सब छोड़ छाड़ करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके गया 1946 के दिसंबर में मैं गया तो स्टेशन पर पहुंचा तो देखा जे हरिकेन लिए हुए एक आदमी हमको ढूंढ रहा है तो हमसे कहते हैं आप तैयारी जी हैं
बांग्ला बोल रहे हैं
वो हिंदी और बांग्ला दोनों मिलाकर गाछ थकता है ऐसा तो हम कहे आप कौन हैं आ तो मैं आपको चिट्ठी लिखता था गुरुजी के तरफ से तो आपको कैसे पता चल गया तो गुरुजी ने कहा जैसे वो आज आएगा और हमने कोई चिट्ठी नहीं दिया था ऐसे ही चलाया था रात में 11 बजे रात में पहुंचा कटवा से होते हुए बर्डवान से होते हुए लाइट रेलवे से और वहां पर देखा जैसे अब कहां जाऊंगा इतने में देखा जैसे फिर हमको लेकर के गए हमको जो जो चीज की जरूरत होती वही सब कुछ दे दिया। तो ये गुरु जी के साथ में प्रचार में सर्वत्र गए और यही सब नोट लेकर के फिर प्रबंध उनका ये सब लिखते थे। एक समय हम लोग गेहूं खली है जानता है मेदनीपुर के समुद्र के कहीं बड़ी नदी के आजकल जहां वो बना है ना बंदरगाह सबसे बड़ा
हल्दिया
को के पास आश्रय कर, तो उसमें मेदनीपुर में हम लोग गुरु जी के साथ में एक महीने में 40 ये हुआ 40 जगहों में बड़ी बड़ी सभाएं और वहां पर सबका ये नोट लेते थे। तो गेहूं खली में एक बार हम लोग गए तो वहां पर एक सभा हो रही थी, उस सभा में विषय था, रात तो नहीं हो जाएगी कितना 6 बज गया तो गेहूं खली में सभा हो रही थी, उसमें बड़े बड़े शिक्षक हेडमास्टर और सब लोग आए थे। पूज्यपाद श्रोती महाराज जी हम लोगों को ले गए थे गुरु जी को, तो मैं कीर्तनिया था उस सभा में, माने गुरु जी के इसमें, और बामन महाराज जी दोहार करने वाले, कीर्तन जानते थे सभी, सब मुखस्थ है उनको किंतु आगे नहीं कहेंगे, हनुमान जी जैसा उनका गुण कोई कह करके जब बतला दे तब तो उनको समझ में आएगा, नहीं तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप लगाए रखे मानो कुछ जानते ही नहीं। और हमारे दीन बंधु बाबा जी थे प्रभुपाद के शिष्य, उनको खोल बहुत बजाने नहीं आता था किंतु वही खोल बजाते थे और हम लोगों का बस गुरु महाराज भाषण करते थे। तो वहां पर जब हुआ तो गुरु महाराज जी ने वहां पर भाषण दिया कि वो रामकृष्ण मिशन का, वो लोग कहते हैं चाहे गाड़ी से जाओ, बैलगाड़ी से, मोटर से, रेल से, नौका से, कहीं से भी जाओ किंतु पहुंचोगे एक ही स्थान पर, कोई शिव को माने, काली को माने, दुर्गा को माने, किसी भी को माने किंतु सभी जाएंगे एक स्थान में। और दूसरा ऊपर आकाश में बहुत ऊपर उठ जाने पर सब कुछ बराबर दिखेगा नीचे का, जितने ही आकाश में ऊपर में एरोप्लेन से जाएंगे वहां से सब चीजें बराबर दिखती, तो जो सबसे सबको बराबर देखता है संसार में सब धर्म जितने हैं सभी भगवान के यहां ले जाए। आस्तिक नास्तिक जो भी धर्म है सब भगवान के यहां ले जाएंगे और सभी रास्ते वहीं पर जाएंगे, ऊपर जाने में सब बराबर, इसलिए जो सबको बराबर देखता है वही यथार्थ दर्शन करने वाला व्यक्ति है, समदर्शी है। दूसरी बात, कहीं भी पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी डालो किंतु सब एक जगह आ जाएगी। गुरु महाराज जी इसी का खंडन कर रहे थे, आकाश में जाने पर जो घास और पहाड़ को बराबर देखता है उसकी आंख खराब है, वो दूरत्व के वजह से ऐसा दिखता है, कभी घास और पहाड़ और पेड़ और पौधे बराबर नहीं होंगे, नदी नाले सब जो एक देखता है यह विचार एकदम गलत है। पोस्ट ऑफिस में एक ही पोस्ट ऑफिस में दो एड्रेस लिख करके डाल दो एक जगह पहुंचेगा, एक कलकत्ता डाल दो एक बंबई डाल दो एक ही पोस्ट ऑफिस में, कहीं एक जगह जाएगा कि दो जगह जाएगा, 1000 चिट्ठी डाल दो 1000 एड्रेस 1000 जगह जाएगा एक जगह नहीं जाएगा। और यहां से एक रेलगाड़ी है कलकत्ता जाती है और एक जाती है बॉम्बे, तो कलकत्ता वाली में चढ़ने से बॉम्बे पहुंच जाएंगे एक जगह जाएगा कलकत्ता और बॉम्बे वाली गाड़ी, ये सब गलत है जो नहीं समझते हैं लोगों के लिए। इसलिए एकमात्र भगवत भक्ति के द्वारा ही भगवान के पास में पहुंचा जाए, भक्ति के अतिरिक्त और दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान के अतिरिक्त पहुंचने का, सब धर्म बराबर नहीं है, एक चोर चोरी करता है वो भी भगवान के पास में पहुंचेगा, एक डकैत है वो भी भगवान के पास में पहुंचेगा, जो नास्तिक है वो भी भगवान के पास में पहुंच जाएगा, यह तो गलत बात है। जो चाहता है शंकर जी की उपासना करके चाहता है जी हमको धन पुत्र परिवार हो, जैसे बाणासुर शंकर जी की उपासना करता था जो हमको धन मिल जाते उसको धन मिल गया, और वो गोवर्धन वाला ब्राह्मण था वो कामाख्या में गया तो उसको भगवान की तरफ में लगा दिया दुर्गा जी ने, और फिर शंकर जी ने भी काशी में कहा जाओ मथुरा में चले जाओ, यहाँ पर मत रहना। तो जो जो चाहता है उसको वो दे देते हैं। यदि भगवत भक्ति मांगी जाए और ये भी संसार की बातें मांगी जाए तो सब एक ही जगह में पहुंचेंगे, एक ही गति होगी। गीता तो ऐसा नहीं कहते हैं, गीता तो कहते हैं जे जथान माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम। इसलिए बाजे देव जानती देव व्रता देवान, देवताओं के यहाँ जो जाता है देवताओं की उपासना करने देवलोक में, भूत लोक की पूजा करने से भूत लोक में, और हमारा उपासना करने वाला का कभी भी पतन नहीं है, वो हमारे पास में जाता है वैकुंठ में। इसलिए सभी एक मत नहीं। उस समय में हुआ वो लोग सब प्रतिवाद करने लगे, सब जितने मास्टर और सब मेदिनीपुर के उधर वाले सब, और वो वैष्णव लोग थे, गुरु महाराज जी का समर्थन करने लगे। जब अधिक होना लगा तो गुरु महाराज जी ने कहा और उन लोगों ने कहा जिसे कल मीटिंग हो और उसमें हम लोग बेलूर के स्वामी जी को बुला रहे हैं। तो गुरु जी ने कहा जैसे आपके गुरु जी नहीं आएंगे मैं लिख करके रजिस्ट्री कर देता हूं, आप जाइए। तो अच्छा 5 दिन का समय दीजिए, हम 5 दिन में हम उनको ले आएंगे। तो ठीक है मैं अभी चिचुड़ा जा रहा हूं कल, और यदि हो हम इसी बच्चे को रथ जा रहे हैं मैंने बांगर है, हमको आने की जरूरत नहीं हो, इसी के प्रश्न का उत्तर या और ये सब उनसे बात कर रहे हैं। और कह दिया जैसे वो लोग आएंगे नहीं, जरूरत है तो मैं भी आऊंगा, किंतु हमारा जो सबसे छोटा बच्चा यहाँ है वही आप लोगों के साथ में बहुत काफी होगा। और जो सुन लेंगे जो केशव महाराज जी आए हैं वहां तो उनका बाप भी नहीं आएगा वहां। सचमुच ऐसा हुआ, वो लोग गए, 1000 कहा कि किराया जाने आने का मैं दूंगा दिया, और वो लोग नहीं आए नाम सुन करके। तो ये लोग सचमुच में यदि होता ना तो उसमें बावन महाराज जी थे। बावन महाराज की बात का मैं भी तब 2-4 महीने का आया था, वो हो जाता तो एक ऐसे ही थे डिस्ट्रिक्ट कोई जज थे, वो गुरु जी से बातचीत करने आए थे, वो बाई चांस हमसे ही बात होने लगी सनातन गोस्वामी के संबंध में। उन्होंने कहा जी शंकराचार्य जी का अधिक प्रमाणिक है, मैंने कहा जी सनातन गोस्वामी का हरिभक्ति विलास अधिक प्रमाणिक है, यही पर तर्क चल रही थी। हमने कहा जी सनातन गोस्वामी शंकराचार्य जो थे शंकर के अवतार, और सनातन गोस्वामी वृंदावन के गोलोक के लवंग मंजरी थे, उनसे आप उनकी क्या तुलना करते हैं। तो वो कहा जी कैसे, इतने में गुरु महाराज भीतर में थे, एकदम दौड़ करके आए और तर्क करके उनको, फिर वो बेचारे हाथ जोड़ करके फिर भाग गए। तो इस तरह से गुरु महाराज जी के भी, प्रभुपाद की तो बात ही क्या, गुरु महाराज जी के भी ऐसे ऐसे सब लोग थे। विशेष करके पूज्यपाद बाम महाराज के विक्रम महाराज हमको देख करके प्रभुपाद के सब शिष्य लोग बड़े प्रसन्न थे, सौपी महाराज जी और सब जो हम लोगों के जाने के बाद भी तुम लोग हमारी धर इसको रक्षा करेगा हमको विश्वास होगा, इसलिए अब हम लोग जाएंगे तो बड़े आनंद के साथ में जाएं, और तुम लोगों को हम लोग आशीर्वाद करते हैं जो हमारे बाद में तुम लोग ये सब होगा। सभी लोग इसीलिए हम लोग तीनों आदमियों का बहुत सम्मान करते थे, यहाँ तक कि सौपी महाराज ने तो अपनी सारी विद्याएं ये तो जो कुछ भी थी हम लोगों को सिखला करके तब फिर गए। मैंने कहा ना बाण महाराज में बहुत सहिष्णुता, और एक गुण है जो अपनी कभी भी प्रशंसा नहीं करना। हम लोग जैन के इन प्रकारण अपनी प्रशंसा कुछ न कुछ कर लेते हैं, किंतु उनमें नहीं देखा। बहुत से लोगों को देखा जो आरंभ किया और मैं इंग्लैंड गया था और वहां से अमेरिका और फ्रांस और कहां कहां होता हुआ अंग्रेजी में भाषण देता था, सब लोग थर्रा जाते थे ऐसे। इनको हमने कहीं नहीं देखा है कहीं भी, जो से अपनी प्रशंसा कर हम लोग कर लेते हैं, किंतु इनमें एक खूबी है और बड़े सहिष्णु। अच्छा जहां मैं रहूंगा, पहले तो मैं इनको गुरु बुद्धि करता हूं, पहले भी करता था अभी करता हूं, किंतु अब कहते हैं जैसे महाराज अपने एक तो सो रहे जाए, आप चले जाए, नहीं तो मैं नहीं बात बोलू, और नहीं तो हमारे साथ में लड़ाई करते रहेंगे, आप बोलिए आप बोलिए आप बोलिए। बड़े संकोची लज्जा, ये लज्जा भूषण है, हम लोग निर्लज्ज है, किंतु उनको लज्जा है, सहिष्णु है, धीर है, गंभीर है, सब विषय और तात्विक है, युक्ति प्रमाण सब शास्त्र की और समस्त शास्त्र के श्लोक, ऐसे ये सर्वगुणी है। अब तो समय हो गया, फिर देखेंगे दूसरे दिन कुछ बोलेंगे, बहुत सी उनकी बातें याद कुछ आ रही हैं,
पूरा भूले बोले दिन पूरा भूले
नहीं, फिर बोले दिन नहीं तो अब रात हो जाएगी, सवा छह बज गया, बस आज भी कर